ये आकाशवाणी दिल्ली है। उपराज्यपाल ने आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। राजधानी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सुखवीर सिंह दलाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली पुलिस ने नरेला हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ने के कारण वजीराबाद जल संयंत्र के जल उत्पादन में 25-50% की कमी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया कि निदेशालय ने 5 दिसंबर को श्री केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। इस मुद्दे पर शहर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस तरह की किसी भी अनुमति का खंडन किया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अगर उपराज्यपाल ने श्री केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है तो प्रवर्तन निदेशालय को इसकी प्रति सार्वजनिक करनी चाहिए। वहीं दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि ये बात स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले में शामिल हैं।
एक बात तो स्पष्ट है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने दलाली और कमीशन खाई है और वो शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं और पूरी दिल्ली को लूटने का काम उन्होंने शराब घोटाले के माध्यम से किया है। जैसे जैसे इस जांच का दायरा आगे बढ़ेगा अरविंद केजरीवाल निस्संदेह इसमें अपराधी हैं और उनको सजा मिलेगी।
राजधानी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि चुनाव में पारदर्शिता और समावेशी भागीदारी बनाए रखने के लिए ये बैठक की गई। बैठक में मतदाता सूची से संबंधित मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज राजधानी में 17 प्रमुख बाजारों और कार्यालय स्थलों पर लोगों से पार्टी के संकल्प पत्र 2025 के लिए सुझाव एकत्र किए। इसी कड़ी में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के सांसदों मनोज कुमार तिवारी और प्रवीण खंडेलवाल के साथ पालिका बाजार के बाहर व्यापारियों से बातचीत की। वहीं नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने करोल बाग का दौरा किया। सुश्री स्वराज ने कहा कि दिल्ली की जनता के बीच पार्टी वीडियो वैन और अपने संकल्प को लेकर पहुंच रही है।
हम लोग करोड़बाग के बीकानेर चौक में आए हैं। हम लोगों ने सिग्नल पे लोगों से बात करी। भाजपा एक बहुत ही लोकतांत्रिक पार्टी है और हम चाहते हैं कि हमारा जो संकल्प पत्र है वो दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं को परिलक्षित करे।
दिल्ली के मुंडका विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर सुखवीर सिंह दलाल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय राज्य मंत्री तथा पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इनके अतिरिक्त दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 6 बार के सदस्य सरदार बलबीर सिंह भी पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने शहर की जनता और विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है।
जो लोग आम आदमी पार्टी के साथ करप्शन फ्री मूवमेंट के नाम पर जुड़े थे आज एक एक करके उस पार्टी को छोड़ते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे जैसे पाप का घड़ा भरता जा रहा था तो वहां पर घुटन महसूस होनी शुरू हो गई वहां के नेताओं को।
वहीं डॉक्टर सुखवीर सिंह दलाल ने आरोप लगाया कि उनके ही कार्यकाल में राजधानी में 2,100 करोड़ रुपए की लागत वाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था लेकिन आज तक वहां कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने नरेला हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बातचीत में आउटर नॉर्थ DCP निधिन वल्सन ने बताया कि कल रात नरेला थाने को घटना की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। मामले में पुलिस ने तुरंत 4 टीम बनाई और CCTV की मदद से 2 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि विवाद पैसों को लेकर था।
कल नरेला थाने में एक इन्फॉर्मेशन मिला था 6 बजे के आसपास इमीडिएटली आउटर नोड डिस्ट्रिक्ट के चार टीम हमने बनाया। विद इन टू आवर्स हमने तीन लोग जो इस मर्डर में इन्वॉल्व थे उनको पकड़ लिया।
उपराज्यपाल कार्यालय ने नरेला क्षेत्र में दिल्ली पुलिस की नियमित गश्त को एक सराहनीय पहल बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देश पर पुलिस के नरेला की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के प्रयास सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने संसद भवन में विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के दो सांसदों से कथित धक्का मुक्की और घायल होने के मामले की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। भाजपा की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद सदस्य बांसुरी स्वराज और हिमांग जोशी के साथ संसद मार्ग पुलिस थाने में राहुल गांधी के खिलाफ बृहस्पतिवार को शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी नागालैंड की महिला सांसद फांगनोन कोन्याक के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कथित दुर्व्यवहार का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने राहुल गांधी के व्यवहार की निंदा की है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से संसद में महिलाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए दिल्ली सरकार डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना शुरू करेगी। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति का कोई भी विद्यार्थी दुनिया की किसी भी शीर्ष विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकेगा। विद्यार्थी की पढ़ाई और आने जाने का संपूर्ण खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। योजना की आज घोषणा करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार की इस पहल के द्वारा अनुसूचित जाति का कोई भी बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करना चाहती है कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप के अंतर्गत सरकार अनुसूचित जाति के प्रतिभाशाली बच्चों की उच्च शिक्षा की आकांक्षा को पूरा करेगी। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की योजनाओं की घोषणा कर रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि 2020 में घोषित इसी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आज तक केवल 25 लाख की स्कॉलरशिप बंटी है, जबकि इसके प्रचार पर 2020-21 में लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। नमो भारत रेल में यात्रियों को किराए में 10% छूट देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने अपना लॉयल्टी पॉइंट प्रोग्राम आज शुरू किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसका लाभ NCRTC के RRTC कनेक्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से लिया जा सकता है।
लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोग्राम के तहत यात्रियों को नमो भारत ट्रेन टिकट पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपए के बदले एक अंक प्राप्त होगा। प्रत्येक लॉयल्टी पॉइंट का मूल्य 10 पैसे है, जो यात्रियों के RRTS कनेक्ट खाते में जमा होंगे। इन पॉइंट्स का प्रयोग भविष्य में टिकट खरीदने के लिए किया जा सकेगा। RRTS कनेक्ट ऐप डाउनलोड करने वाले प्रत्येक नए उपयोगकर्ता को 500 लॉयल्टी पॉइंट्स प्रदान किए जा रहे हैं, जिनकी कीमत 50 रुपए के बराबर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने बताया कि इस पहल से न केवल यात्रियों को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि RRTS कनेक्ट ऐप के माध्यम से डिजिटल QR टिकट के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सभी अर्जित लॉयल्टी पॉइंट्स क्रेडिट होने की तारीख से 1 वर्ष तक वैध रहेंगे। इसके अतिरिक्त NCRTC ने द्विमासिक यात्री न्यूज़लेटर नमो भारत टाइम्स को भी जारी किया। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श, नई दिल्ली।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज सरकार के 100 दिवसीय सघन तपेदिक उन्मूलन अभियान पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। श्री नड्डा ने अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए मुख्यमंत्रियों से सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने अभियान को कारगर बनाने के लिए विधायकों के सहयोग का भी आह्वान किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत ने मलेरिया के मामलों और उससे जुड़ी मृत्यु दर कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2024 की विश्व मलेरिया रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में वर्ष 2017 में मलेरिया के अनुमानित मामलों की संख्या 64 लाख से घटकर वर्ष 2023 में 20 लाख हो गई है। देश में मलेरिया से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या लगभग 11,000 थी, जो घटकर 3,500 रह गई है। मृत्यु दर में 68% की उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आज पहला विश्व ध्यान दिवस है। इस दिवस का आयोजन शांति और कल्याण की भावना से जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है।
कहा जाता है कि तनाव, हिंसा और सामाजिक असंतोष सहित कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकने की क्षमता ध्यान में है। योग विशेषज्ञ और थेरेपिस्ट डॉक्टर नीलम जोशी कांडपाल ने बताया कि ध्यान लगाने से हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
ध्यान को हम कह सकते हैं कि ये हमारे मन को डिटॉक्स करता है और मन के डिटॉक्स होने से शरीर खुद ब खुद डिटॉक्स हो जाता है। डिजीज हमारी साइकोसोमेटिक होती है जो कि मन से शरीर पे आती है। मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है, तो ध्यान इसका अच्छा माध्यम है जिससे कि हमारे जो रोज की समस्याएं हैं जैसे कि नींद का ना आना है, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारियों से खुद ब खुद निजात मिल जाता है।
संयुक्त महासभा ने हाल ही में इस संबंध में भारत द्वारा सह प्रायोजित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान को सदियों से अभ्यास में लाया जाता रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ध्यान को दैनिक जीवन का अंग बनाने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ध्यान व्यक्ति और समाज के जीवन में शांति और समरसता लाने का सशक्त माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि तकनीक के मौजूदा दौर में ऐप और वीडियो ध्यान को अपनाने में सहायक हो सकते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज पंचतत्व में विलीन हो गए। सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत कई बड़े नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। सांसद कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। यमुना नदी में प्रदूषण स्तर बढ़ने के कारण वजीराबाद जल उपचार संयंत्र द्वारा जल उत्पादन में 25 से 50 प्रतिशत की कमी आ गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि स्थिति में सुधार होने तक पानी का दबाव कम रहने की संभावना है। राजधानी में वायु गुणवत्ता के स्तर में आज थोड़ा सुधार देखने को मिला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 7 बजे तक वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक 364 दर्ज किया गया। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में पानी का छिड़काव कर रही है। 0 से 50 तक वायु गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। 51 से 100 तक के बीच वायु गुणवत्ता संतोषजनक, 101 से 200 के बीच सामान्य, 201 से 300 के बीच खराब तथा 301 से 400 के बीच बहुत खराब मानी जाती है। दिल्ली में आज ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि दोपहर के समय हल्की धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में सवेरे और रात के समय घना कोहरा छाए रहने और शीतलहर चलने का अनुमान है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। राजधानी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए दिल्ली सरकार डॉक्टर अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना शुरू करेगी। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सुखवीर सिंह दलाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने नरेला हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यमुना नदी में प्रदूषण स्तर बढ़ने के कारण वजीराबाद जल संयंत्र द्वारा जल उत्पादन में 25 से 50 प्रतिशत की कमी आई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।